राज्य ईरान की आवाज।
रेडियो तेहरान के सम्मानीय श्रोता जहरा जैदी और साथियों का सलाम स्वीकार करें। आज का कार्यक्रम पवित्र कुरान के सूरह निसा की 17वीं और 18वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से किया जा रहा है। किरात का श्रेय प्राप्त कर रहे हैं श्री मोहम्मद जादा।
بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ केवल उन लोगों की तौबा स्वीकार करना ईश्वर के जिम्मे है जो अज्ञानता के कारण बुराई कर बैठते हैं, फिर शीघ्र ही तौबा कर लेते हैं, तो यही लोग हैं जिनकी तौबा ईश्वर स्वीकार कर लेता है, और ईश्वर ज्ञानी भी है और तत्वदर्शी भी। और तौबा ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो बुरे कर्म करते रहे और फिर जब मौत सामने आ गई तो उन्होंने कहा कि अब हमने तौबा कर ली, और न तौबा उनके लिए है जो मरते समय तक काफिर रहे, उनके लिए हमने कड़ा दंड तैयार कर रखा है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। दोस्तों, आज शनिवार है, बहमन की 22 और फरवरी की 11 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के सातवें महीने रजब की 20 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे, उसके बाद आपकी सेवा में कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा। उसके बाद आपकी सेवा में स्वतंत्रता प्रभात के मौके पर पेश किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी पेश किया जाएगा। और उसके बाद आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जाएगा वो होगा अच्छी आदतें। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इस्लामी क्रांति की 44वीं वर्षगांठ के मौके पर ईरान के 1400 शहरों और 38,000 कस्बों और गांवों से उठी अमरीका मुर्दाबाद की गूंज। दुश्मन ईरान के विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, दूसरों की जिंदगी छीनने वाले ईरानी जनता को जीवन देने का सपना दिखा रहे हैं राष्ट्रपति रईसी। तुर्की में वीरान इमारतों के मलबों में जिंदगी तलाशते बचाव कर्मी, अर्दोगान हुए भावुक। सनातन धर्म संसद ने फिर फैलाया अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत। अब आपकी सेवा में विस्तार से खबरें पेश करते हैं। आज पूरे ईरान में बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ क्रांति की सफलता की 44वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर पूरे ईरान में भव्य रैली निकाली गई जिनमें लाखों लोग मौजूद थे। ईरान की क्रांतिकारी जनता ने 11 फरवरी को एक बार फिर सड़कों पर निकलकर क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और सर्वोच्च नेता की आज्ञा पालन की प्रतिबद्धता दोहराई और साम्राज्यवादियों के विरुद्ध गगन भेदी नारे लगाए। इस्लामी क्रांति की सफलता के शुभ अवसर पर राजधानी तेहरान सहित समूचे ईरान के हजारों शहरों व गांवों से रैलियां निकाली गईं। राजधानी तेहरान में निकलने वाली रैलियां आज़ादी स्क्वायर की ओर गईं और रैली में भाग लेने वाले स्वतंत्रता, आज़ादी और इस्लामी लोकतंत्र का नारा लगा रहे थे। 22 बहमन को ईरान की इस्लामी क्रांति सफल हुई थी और स्वतंत्रता, आज़ादी और ईरानी राष्ट्र की योग्यताओं के निखार के चरम बिंदु के प्रतीक के रूप में यह दिन मनाया जाता है। ईरान के लोग एकता, एकजुटता और समरसता के साथ सड़कों पर निकले हैं ताकि वे ईरानी राष्ट्र के दुश्मनों को बता दें कि वे दुश्मन से हमेशा सावधान हैं और अपनी इस्लामी क्रांति की रक्षा करेंगे। विभिन्न देशों के सैकड़ों विदेशी मेहमान भी तेहरान में 22 बैबन के अवसर पर होने वाली विशेष रैली व कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ईरान आए थे। इससे पूर्व विभिन्न नेताओं और वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने जनता से क्रांति की वर्षगांठ के अवसर पर निकलने वाले जुलूसों में भरपूर उपस्थिति की अपील की थी। ईरान में इस्लामी क्रांति लाने वाली जनता आज पूरे हर्षोल्लास से क्रांति के जुलूसों में भरपूर ढंग से उपस्थित रही। आज का दिन ईरान की इस्लामी क्रांति की 44वीं वर्षगांठ का दिन है। पूरा ईरान आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। शनिवार को ईरान के हर कोने से निकलने वाली रैलियों में अभूतपूर्व तरीके से देश की जनता ने भाग लिया। तेहरान में लाखों की संख्या में लोगों ने रैली में भाग लिया। इस मौके पर आजादी स्क्वायर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि दुश्मन ईरान के विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा समेत विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस्लामी क्रांति के दुश्मनों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ईरान इतने प्रतिबंधों के बावजूद कैसे इतने शानदार तरीके से इतना ज्यादा विकास कर सकता है। राष्ट्रपति रईसी ने तेहरान के आजादी स्क्वायर पर इस्लामी क्रांति की महान सफलता की 44वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित मिलियन मार्च में शामिल लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज खतरों, धमकियों और कड़े प्रतिबंधों के बावजूद इस्लामी गणराज्य ईरान ने फिक्स कैपिटल, निवेश में वृद्धि, आर्थिक विकास और अन्य क्षेत्रों में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि जब दुश्मनों ने देखा कि ईरान सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और उसके विकास को रोकना संभव नहीं है, तो उन्होंने एक और साजिश शुरू की और सोचा कि वे देश के बढ़ते कदम को अराजकता और दंगों के जरिए रोक सकते हैं। लेकिन दुश्मनों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति रईसी ने इस बात पर बल दिया कि आज का दिन राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने का दिन है। उन्होंने कहा कि जो लोग हालिया दंगों में दुश्मनों के बहकावे और धोखे में आ गए थे, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ईरानी राष्ट्र का दिल बहुत बड़ा है। हम खुले मन से उन्हें फिर से गले लगाने के लिए तैयार हैं। इस्लामी क्रांति की सफलता की 44वीं वर्षगांठ के मौके पर दुनिया भर के देशों से बधाई संदेश आने का सिलसिला जारी है। इस बीच भारत, जॉर्जिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, आर्मेनिया, किर्गिज़िस्तान और क्यूबा के विदेश मंत्रियों ने अलग अलग संदेशों में इस्लामी क्रांति की 44वीं सालगिरह पर ईरान के विदेश मंत्री को बधाई संदेश भेजा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के खुफिया मंत्रालय के अधिकारियों ने इस्फहान के रक्षा मंत्रालय के वर्कशॉप पर नाकाम आतंकी हमले में लिप्त मुख्य एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। खुफिया मंत्रालय और IRGC के खुफिया विभाग ने इस्फहान में रक्षा मंत्रालय की एक वर्कशॉप में विध्वंसक कार्रवाई करने की असफल कार्रवाई में लिप्त मुख्य एजेंटों की गिरफ्तारी के संबंध में एक संयुक्त बयान जारी किया है। खुफिया मंत्रालय और IRGC के खुफिया विभाग के संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस्लामी क्रांति की सफलता की 44वीं वर्षगांठ के शानदार आगमन के अवसर पर हार्दिक बधाई पेश की जाती है और ये याद दिलाना चाहते हैं कि ईरान के सम्माननीय राष्ट्र को ये सूचना दी जाती है कि खुफिया मंत्रालय, IRGC के खुफिया विभाग और रक्षा मंत्रालय के सूचना विभाग की सहायता और समर्थन से खुफिया विभाग के कर्मियों ने 28 जनवरी को इस्फहान में रक्षा मंत्रालय के औद्योगिक केंद्र में से एक नाकाम आतंकी कार्रवाई के मुख्य अपराधियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भारत में इस्लामी गणराज्य ईरान के राजदूत ने इस्लामी क्रांति की 44वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सामरिक स्वतंत्रता ईरान के साथ संबंध बनाए रखने का सबसे बड़ा सहारा है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तैनात इस्लामी गणराज्य ईरान के राजदूत ईरज इलाही इस्लामी क्रांति की 44वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान की विदेश नीति में भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिछले महीनों उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में ईरान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों देशों के नेताओं की ये महत्वपूर्ण भेंटवार्ता तेहरान और नई दिल्ली के रिश्तों की अहमियत को दर्शाते हैं। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में इस्लामी क्रांति की 44वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भारत के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के अलावा भारत में तैनात रूस के राजदूत डेनिस अलीपोफ समेत कई अन्य देशों के राजदूतों, कूटनायकों, राजनीतिक और धार्मिक व सामाजिक हस्तियों ने भाग लिया। तुर्की में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से होने वाले मौतों की संख्या 21,000 पार पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे मलबे में फंसे लोगों को जीवित बाहर निकालने की आशाएं धूमिल पड़ती जा रही हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद हर दिन मरने वालों की संख्या का एक नया आंकड़ा सामने आ रहा है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने शनिवार को बड़े भावुक मन से इस बात की पुष्टि की है कि उनके देश में भूकंप से मरने वालों की संख्या 21,043 पहुंच गई है। वहीं इस भूकंप से घायल होने वालों की संख्या 10,000 है, जबकि कई लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अर्दोगान ने अपने बयान में कहा कि आए भूकंप के बाद उनके देश को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने बताया कि भूकंप ने तुर्की के 500 किलोमीटर से अधिक इलाके को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ शहरों और क्षेत्रों में बचाव और खोज अभियान समाप्त हो गया है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी लगातार बचाव एवं राहत कार्य बिना रुके जारी है। सीरिया में एलप्पो और लातकिया या लाजकिया के क्षेत्रों में भूकंप पीड़ितों की मदद करने का सिलसिला ऐसी स्थिति में जारी है कि शसत गुट इदलिब को राहत सामग्री और संसाधनों की आपूर्ति में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अलमयादीन के सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों से संयुक्त अरब इमारात की ओर से क्रॉसिंग खोलने के संबंध में शसत गुटों के साथ बातचीत की जा रही है और ये सशस्त्र गुट लगातार विरोध कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया और प्रशासन पूरी तरह खामोश नजर आया। 5 फरवरी को बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सनातन धर्म संसद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों की 3 मुख्य मांगे हैं: रामचरितमानस को हिंदू राष्ट्र भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और शास्त्री को ZZ+ सुरक्षा दी जाए। हालांकि बाद में यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के आह्वान में तब्दील हो गया। इसी के साथ रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त होते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोतो आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में, मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बारे में। ग्यारह फरवरी सन 1979 को ईरान में इस्लामी क्रांति सफल हुई, जिसके बाद इस्लामिक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई और इस शासन की छत्रछाया में इस्लामी गणतंत्र ईरान हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। जायजा पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास।
11 फरवरी 1979 को ईरान में इमाम खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति सफल हुई और देश की जनता का 2500 साल से चली आ रही जालिम शाही व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कामयाब हुआ। नतीजे में इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक क्षेत्रों में ईरानी कौम की जबरदस्त कामयाबी इस्लामी क्रांति की सफलता और इस्लामी गणराज्य व्यवस्था की छत्रछाया में संभव हो पाई। दरअसल 11 फरवरी की क्रांति ईरान में कई हजार साल पर फैले इतिहास का बहुत बड़ा मोड़ है। इस क्रांति ने ईरानी समाज में अलग अलग मैदान में बुनियादी बदलाव कर दिए। इमाम खुमैनी, जिनके नेतृत्व में यह क्रांति सफलता की मंजिल तक पहुंची, बेमिसाल व्यक्तित्व के मालिक थे। इमाम खुमैनी के स्वर्गवास को 3 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, मगर आज भी इमाम खुमैनी के विचार और सिद्धांत इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था की राह के दीपक हैं और उनकी यादें ईरानी कौम के दिलों में ताजा हैं। इमाम खुमैनी बड़ी गहरी सोच रखने वाले दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज में इस्लामी क्रांति का आंदोलन चलाया। वो इस आंदोलन के दौरान विश्व स्तर पर कैरिज्मेटिक हस्ती के तौर पर नजर आए। उन्होंने केवल ईरान में ही बुनियादी बदलाव नहीं किया, बल्कि पूरे इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने का जरिया बने। यही वजह है कि सारी दुनिया में ईरान की इस्लामी क्रांति को इमाम खुमैनी की क्रांति के रूप में जाना जाता है। 11 फरवरी की इस्लामी क्रांति की सफलता को सारी दुनिया के लिए भी एक हैरत अंगेज घटना के रूप में देखा जा सकता है। 20वीं शताब्दी की ये महान घटना एक तरफ तो विश्व स्तर पर साम्राज्यवादी समीकरणों के सामने चुनौती बन गई और दूसरी तरफ इसने पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका के स्ट्रेटेजिक घटक यानी ईरान की शाही सरकार को उखाड़ फेंका। इस क्रांति ने इस्लाम को विश्व स्तर पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में परिचित करवाया। इस्लामी इनकलाब के नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनाई कहते हैं कि अगर इस्लामी क्रांति और इमाम खुमैनी न होते, अगर इस्लाम इस क्रांति की पहचान न बनता, तो अमेरिका के अत्याचारपूर्ण वर्चस्व से मुक्ति मिल पाना संभव न होता। इस क्रांति का मानना है कि इस्लामी दुनिया के पास अपनी समस्याओं के समाधान और सारे मामलों के संचालन की क्षमता मौजूद है और ये भी सच्चाई है कि इस्लामी दुनिया के भीतर पाई जाने वाली अनेक समस्याएं और विवाद बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप और साजिशों का ही नतीजा हैं। इस्लामी क्रांति और इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये विचार विश्व साम्राज्यवाद और विशेष रूप से अमरीका के लिए बड़ी चुनौती हैं। अमेरिका दरअसल वर्चस्व की व्यवस्था में विश्वास रखता है। उसे पारस्परिक सहयोग और बराबरी के आधार पर दो तरफा संबंधों और रिश्तों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए उसे इस्लामी क्रांति और इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था के विचारों और नीतियों से हमेशा आपत्ति रहती है। यहीं से यह भी समझ में आ जाता है कि ईरान और इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था से अमेरिका की दुश्मनी की वजह क्या है।
ईरान की इस्लामी क्रांति का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्वव्यापी हुआ। इस क्रांति ने दुनिया के अनेक इलाकों को प्रभावित किया। इस बारे में श्रीनगर से एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
बहस प्रशासित करगिल में आज योमुल्लाह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। पूरी करगिल की बस्ती उमड़ आई थी, जिन्होंने इस्लामी गणतंत्र ईरान की सफलता के लिए प्रार्थनाएं भी की और इन रैलियों में भरपूर तरीके से भाग लिया। धार्मिक नेताओं ने इन रैलियों की अध्यक्षता की। करगिल के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए ये रैलियां करगिल पार्क में जमा हुई, जहां 1,00,000 से ज्यादा लोग जमा हुए, जहां पर धार्मिक नेताओं ने यौमुल्लाह पर विस्तार के साथ रोशनी डाली। धार्मिक नेताओं ने कहा कि यौमुल्लाह सिर्फ ईरान की सफलता का दिवस नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के उन लोगों के सफलता का दिवस है जो मजलूम थे। उन्होंने कहा कि इसी दिवस ने मजलूमों को जालिमों के खिलाफ उठ खड़ा होने का तरीका दिखाया। उन्होंने कहा कि इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह की क़यादत में जिस इनकलाब इस्लामी ने जन्म लिया, वो आज अपने शबाब पर है। उन्होंने कहा कि विश्व के तमाम मजलूम इस इनकलाब के हिमायती हैं और वो इस इनकलाब के तई किसी भी बलिदान से गुरेज नहीं करेंगे। वरिष्ठ धार्मिक नेता आगा साबिरी ने इस अवसर पर रेडियो तेहरान से वार्ता करते हुए कहा,
आज 22 बहमन 11 फरवरी यौमुल्लाह के मुनासिबत से मैं रहबरी इनकलाब इमाम खामेनेई मुद्दज़िल अली को और तमाम मिल्लत शहीद परवर को और वारिसान इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को दिल की गहराइयों से तबरीक पेश करना चाहता हूँ। बिलखसूस मराज इज़ाम और विलायत फ़कीह के पैरोकारों को, तमाम आलम इंसानियत को मैं इस दिन की मुनासिबत से तबरीक पेश करता हूँ, क्योंकि ये दिन एक इंसान के काविशों का नतीजा नहीं है यौमुल्लाह, बल्कि ये अन अबुदुल्लाह वजतनिबु तागूत के नतीजे में मिलने वाला एक दिन है, क्योंकि अल्लाह की तरफ बंदगान खुदा को मारिफी यानी तारुफ होने का दिन है और तागुती निजाम खत्म होने का दिन है।
इस बीच करगिल बाजार को ऐसा सजाया गया था कि वो देखने के काबिल था। करगिल के निकटवर्ती क्षेत्रों से भी रैलियां अभी जारी हैं, जो करगिल बाजार से होते हुए करगिल पार्क पर जमा हो रहे हैं। ये दिन करगिल के इतिहास में बहुत ही बड़े दिन के तौर पर मनाया जाता है। करगिल को यह भी शर्फ हासिल है कि इसे छोटा ईरान कहा जाता है, क्योंकि यहां पर इनकलाब इस्लामी की हिमायत में लोग अपना हर कोई चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से ही अमेरिका ने इस क्रांति को और इसके नतीजे में स्थापित होने वाली इस्लामिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिशें शुरू कर दी और ये कोशिशें आज तक जारी हैं। अलबत्ता इन कोशिशों में अमेरिका को शुरू से शिकस्त मिलती रही है और आज तक शिकस्त मिल रही है। जायजा ले रहे हैं रविश जैदी।
ईरान इस साल इस्लामी क्रांति की सफलता की 44वीं वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका के चरमपंथी राजनेता जॉन बोल्टन ने एक जमाने में दावा किया था कि इस्लामी क्रांति की 40वीं सालगिरह से पहले ईरान की सत्ता आतंकी संगठन MKO के हाथ में आ जाएगी। जॉन बोल्टन और उनकी कट्टरपंथी सोच और जंगी जुनून से सारी दुनिया वाकिफ है। वो अमरीका के उन नेताओं में है जो MKO जैसे आतंकी संगठन के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं और उसका समर्थन करते रहे हैं। वहीं MKO जो 2012 तक अमेरिका की आतंकी संगठनों की सूची में शामिल था, बोल्टन ने जुलाई 2017 में पेरिस में आतंकी संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा था कि ईरान की इस्लामी क्रांति को 40वीं सालगिरह मनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बोल्टन का ये सपना दरअसल अमेरिका की 4 दशकों से जारी तमन्ना की झलक है, जो शुरू से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसकी वजह यह है कि इस्लामी गणराज्य ईरान अमेरिका की नीतियों और विस्तारवादी मंसूबों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। यही नहीं, उसने अमेरिका को कई बार बुरी तरह अपमानित भी किया है। पूरे पश्चिमी एशिया के इलाके में अमेरिकी वर्चस्व के सामने ईरान गंभीर चुनौती बना हुआ है। ईरान की ये विचारधारा पूरे इलाके में फैल गई है, जिसकी वजह से अमेरिका के घटक गैर कानूनी ज़ायोनी शासन के लिए भी गंभीर समस्या पैदा हो गई है। ایران سے پریرنا پا کر اور ایران کی مدد سے پورے پشمی ایشیا کے علاقے میں اسلامی پرتیروت کا بہت بڑا بلاک تیار ہو گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ خود پشمی دیشوں کے ٹیکہ کار صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک شیتری طاقت بن گیا ہے اور شیت ہی نہیں وش استر کا بڑا اور پربھاوشالی کھلاڑی ہے۔ حالیہ ورشوں کی بات کریں تو ٹرمپ پرشاسن پرمانو ڈیل سے باہر نکل گیا اور اس نے ایران پر بے حد کٹھور اور امانویہ پابندیاں لگا دیں۔ واشنگٹن نے ایران پر یہ پابندیاں اس امید سے لگائی تھیں کہ ایران کی جنتا بے حد کٹھن حالات میں پھنس کر اپنی اسلامی لوکتانترک شاسن ویوستھا کے خلاف سڑکوں پر اتر پڑے اور اسے اکھاڑ پھینکے، مگر خود امریکہ کی بائیڈن سرکار کہہ رہی ہے کہ ایران پر لگائے گئے کٹھور پرتیبندھ ناکام رہے۔ امریکہ نے تو یہ حد کر دی ہے کہ ایران میں ہونے والے دنگوں کے دوران دنگائیوں کا سمرتھن شروع کر دیا اور بار بار ہستکشیپ پور بیان دیے۔ البتہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، امریکی شروع سے ہی یہی کرتے آئے ہیں۔ ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہم سے چھپی نہیں ہے کہ چار دشکوں سے ادھک سمے سے وائٹ ہاؤس کی ہمیشہ یہی نیت رہی ہے کہ ایران کی شاسن ویوستھا کو گرا دے، اور ہم نے پرمانو وارتا کے دوران یہ مدعا کئی بار اٹھایا بھی ہے۔ امریکیوں کا شتروتا پور رویہ سمسیاؤں کے سمادھان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلامی گڑراج ایران نے اس کے بعد بھی ہمیشہ وارتا اور سمباد کا سمرتھن کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ لمبت معاملوں کو بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے، لیکن پارسپارک سمان کے آدھار پر۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کارکرم سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤں، ابھی آپ کارکرم راجنیتک چرچا ہمارے ساتھی احمد عباس سے سن رہے تھے۔ اب آپ کی سیوا میں سوتنترتا پربھات کے موقع پر پیش کیے جانے والے وشیش کارکرم کی ایک انکڑی حاضر ہے۔ شروتاؤں، ایران کی اسلامی کرانتی کی 44ویں ورشگاٹھ کے اوسر پر وشیش کارکرم کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں روش زیدی اور مریم مہردادی کا سلام سویکار کیجیے۔
ایران میں اسلامی کرانتی کی 44ویں ورشگانٹھ کروڑوں ایرانیوں نے بڑی اتساہ کے ساتھ منائی اور 11 فروری کے دیش ویاپی جلوسوں میں دیش واسیوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا۔ امام خمینی کے نیتتو میں اسلامی کرانتی کی سفلتا اور اس کے بعد اسلامی لوکتانترک شاسن ویوستھا کی استھاپنا دراصل دوسری شتابدی کے آخری حصے میں وشو استر کی بہت بڑی گھٹنا ثابت ہوئی۔ اس گھٹنا نے اسلام کا مولیوان شکشاؤں کی وراثت کی طرف سماج اور پربدھ ورگ کا دھیان پھر سے کیندرت کرایا اور دیکھنے میں آیا کہ دنیا انسان اور سماجک، راجنیتک و سانسکرتک منچوں کے سمبندھوں کو بالکل الگ نظریے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ امام خمینی کے نیتتو میں انقلاب کامیاب ہوا اور شاہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ امام خمینی نے نرواسن سے سودیش واپسی کے بعد شاہ سے جڑے ادھیکاریوں کی ستہ کو غیر قانونی اعلان کر دیا اور کہا کہ اگر ان لوگوں نے ستہ میں بنے رہنے کی کوشش کی تو ان پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔
دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم۔
فراوان را سبز را،
ایران کا اسلامی انقلاب دوسری کرانتیوں سے کافی حد تک الگ ثابت ہوا۔ دنیا میں آنے والی بڑی کرانتیوں پر نظر دوڑانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کرانتیوں کی وجہ اور بنیاد بالکل الگ تھی، جبکہ ایران کی اسلامی کرانتی بالکل الگ کارنوں سے استتو میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے وچارک یہ بات مانتے ہیں کہ اس کرانتی کے بارے میں ان کی سوچ غلط ثابت ہوئی، کیونکہ یہ بالکل الگ روپ کی کرانتی ہے۔ عام طور پر وچارک کرانتیوں کے بھوتک کارنوں کا مولیانکن کرتے ہیں، مگر ایران کی اسلامی کرانتی کو کیول اسلامی درشٹی کوڑ کی مدد سے ہی صحیح روپ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت سے ٹیکاکار کہتے ہیں کہ ایران کی کرانتی اپنے آپ میں بالکل انوکھی کرانتی ہے۔ یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک کرانتی کسی راجنیتک دل کے سمرتھن کے بغیر کامیاب ہو جائے اور اس کا سہارا کیول دھارمک کیندر جیسے مسجدیں اور دھارمک سکشا کیندر ہوں؟ ایران کی اسلامی کرانتی اسلامی جگت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نیا موڑ ثابت ہوئی۔ اس کرانتی نے پشچمی نظریے پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ اسلامی اصولوں اور شکشاؤں کے دائرے میں رہ کر بہترین اور وکاس شیل شاسن ویوستھا کی استھاپنا کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پشچمی طاقتوں نے اس کرانتی اور اس سے استتو میں آنے والی اسلامی لوک تانترک ویوستھا کو بار بار نشانہ بنایا اور آج تک نشانہ بنا رہی ہیں۔ اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا کہنا ہے کہ جو سازشیں نظر آ رہی ہیں اگر ان کی پڑتال کی جائے تو ان میں ایران ہی نہیں اسلام کے دشمن لپت نظر آئیں گے۔
ہمیں ان دست ها ہم اگر جستجو کردید میرسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام۔
ایران کی نئی اسلامی سبھیتا بھوش کو الگ نظریے سے دیکھتی ہے اور راشٹر کے سامنے الگ شتیج کھولتی ہے۔ ایران وہ دھرتی ہے کہ جہاں نئی نئی سبھیتائیں پروان چڑھتی رہی ہیں، چونکہ ایرانی سبھیتا کا سوبھاؤ پھیلنے اور دوسروں تک پہنچنے کا ہے، اس لیے بڑے پیمانے پر بدلاؤ بھی ہوتے رہے ہیں۔ ایرانی سبھیتا اور سنسکرتی کا دائرہ دوسری سبھیتاؤں تک پہنچتا رہا ہے، جس کی وجہ سے سانسکرتک لین دین کی پرکریا بھی پرانے سمے سے چلی آ رہی ہے۔ ایران اسلامی کرانتی آئی تو اس سمے بھی سبھیتا کے بارے میں گمبھیر بحثیں شروع ہوئیں، اور جب سوویت سنگھ ٹوٹا تو پھر اور بھی گمبھیرتا کے ساتھ اس وشے پر ومرش تیز ہوا۔
فوکویاما نے تو یہ نظریہ پیش کر دیا کہ اب اتہاس کا سفر پورا ہوا اور لبرل ڈیموکریسی بہترین شاسن اور جیون ویوستھا کے روپ میں استھاپت ہو گئی ہے۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے اپنے نظریے کا کھنڈن بھی کیا۔ امریکی وچارک ہینگٹنگٹنگ نے 1993 میں اپنی کتاب میں لکھا کہ شیت یدھ ختم ہو جانے کے بعد اب نظریاتی جنگ کا دور بھی ختم ہو گیا اور نئے یگ کی شروعات ہو گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سبھیتاؤں کا ٹکراؤ میں ایک طرف پشچمی سبھیتا ہے تو دوسری اور اسلامی اور کنفیوشس سبھیتا ہے۔ یہ نظریہ دراصل سبھیتاؤں کے بیچ وناشکاری ٹکراؤ کی تصویر پیش کرنا چاہتا ہے اور پشچم کے نیتی نِدھارکوں کو سجھاؤ دیتا ہے کہ وہ اپنے اندرونی ایکتا کو مضبوط کریں۔ ہینٹنگٹنگ کے سبھیتاؤں کے بیچ ٹکراؤ کے نظریے کے مقابلے میں ایران کے پورو راشٹرپتی نے اپنے نیو یارک دورے میں سنیکت راشٹر سنگھ مہا سبھا کے ادھیویشن میں سبھیتاؤں کے بیچ سمواد کا وچار پیش کیا، جس کا وشو سمودائے نے سواگت کیا۔
اسلام کے آگمن کے بعد شروعاتی ورشوں میں سانسکرتک و گیان کے آدھاروں پر اسلامی سبھیتا آگے بڑھی، اور آج بھی گیان، سانسکرتک شانتی اور دوستی کی بنیادوں پر آدھارت یہ سبھیتا اپنا پیغام عام کر رہی ہے۔ اسلامی سبھیتا نے دنیا کے سامنے شتابدیوں پہلے بہترین سنسکرتی اور سبھیتا کی تصویر پیش کر دی۔ اس طرح مانو سماج پر اسلام کا قرض بہت بڑا ہے، اس سے کہیں زیادہ، جس کے لیے وچارک یونان کا نام لیتے ہیں۔ اسلامی سبھیتا کا سب سے اہم پہلو آدھیاتم اور روحانیت ہے۔
اسلامی سبھیتا کو اتہاس کی درشٹی سے تین بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک دور اسلام کے آگمن سے لے کر ساتویں شتابدی عیسوی تک ہے، جب بغداد پر ہلاکو خان کا قبضہ ہوا۔ دوسرا دور مغلوں کے اسلام سویکار کر لینے کے بعد سے لے کر، جس کے تحت صفوی اور عثمانی حکومتیں استھاپت ہوئیں، اٹھارہویں شتابدی تک ہے۔ تیسرا دور یورپ کی طاقت بڑھنے کے بعد سے لے کر اسلامی دیشوں پر ان کے پرتیکش یا پروکش نینترن کے زمانے تک ہے۔ اتہاس یہ مانتا ہے کہ اسلامی سبھیتا کا چرم پہلے دور میں نظر آیا۔ اس دور میں اسلام اور اسلامی سبھیتا دھرتی کے بڑے بھوبھاگ پر استھاپت ہو گئی۔ ایشیا، افریقہ کے بڑے بھوبھاگ اور یورپ کا بھی ایک بھاگ اسلام کے نینترن میں آ گیا۔ یہ سارے علاقے سنیکت سنسکرتی اور دین کے آدھار پر ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ ان علاقوں میں بسنے والے خود کو ایک وشال سبھیتا کا حصہ مانتے تھے۔ اس بیچ اسلامی سبھیتا کی ایک خاص بات بہت چرچا میں رہی، اور وہ اسلام کی رواداری اور سہنشیلتا تھی۔
ایران کے وکھیات اتہاسکار زرنین کوب لکھتے ہیں کہ اسلامی سبھیتا اس پورب اور پشچم میں ساری سبھیتاؤں کی جگہ استھاپت ہوئی، اور انداز یہ تھا کہ نہ تو پچھلی سنسکرتیوں کا اس نے پورن انوسرن کیا اور نہ ہی انہیں ختم کیا، اس نے دوسری سبھیتاؤں کو بھی باقی رہنے کا موقع دیا۔ اس بیچ ہیبرو، یونانی، بھارتی، ایرانی، ترکی، یہاں تک کہ چینی سبھیتا بھی باقی رہی۔ اسلامی سبھیتا نے ان سبھیتاؤں کو اپنی گود میں جگہ دی۔ قرآن شکشاؤں نے الگ الگ سماجوں کو ایک دوسرے سے جوڑا۔
تیسرا دور شیتھلتا اور پتن کا دور ہے۔ اسلامی سماجوں پر اس دوران پشچم کا نینترن ہو گیا، مگر ایران میں اسلامی کرانتی سفل ہونے کے بعد اسلامی سبھیتا کا نیا دور شروع ہوا۔ دراصل 1979 میں اسلامی انقلاب نے نوین اسلامی سبھیتا کی بنیاد رکھی، بلکہ پہلے دور کی اسلامی سبھیتا کو نیا جیون دیا۔
ایران کی اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا اس بارے میں کہتے ہیں کہ ایران قوم کے اندر ہر پہلو سے اتنی کشمتائیں موجود ہیں کہ اگر وہ ڈھان لے اور پکا ارادہ کر لے تو بلندیوں پر پہنچ جائے گی۔ یہ ایران قاجاری اور پہلوی دور جیسے حالات میں بندھا نہیں رہ سکتا۔ یہ ایران اسلامی دور کا ایران ہے۔ اسلام مانوی سبھیتا کی چوٹی پر پہنچنا ہی ہے۔ البتہ اسلامی کرانتی کے نیتا اس بندو پر بھی تاکید کرتے ہیں کہ اس وچاردھارا کو آگے لے جانا کٹھن کام ہے، کیونکہ کچھ گلیارے ہیں جن کے سوارتھ آج کی بھوتکوادی دنیا میں نہیت ہیں۔
انسان کو بے شک نت نئی کھوج اور نئے آوشکار کی ضرورت ہے، مگر اسلام چاہتا ہے کہ اس پوری پرکریا میں نظر انداز کر دیے جانے والے بے حد مہتوپورن پہلے یعنی ادھیاتم کو ترجیح کے روپ میں سماج میں لائے۔ البتہ یہ کام کہنے میں تو آسان دکھائی دیتا ہے، مگر دراصل ہے بہت مشکل، کیونکہ اس کے ورودھی بڑے طاقتور لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن طاقتوں کے ہت دنیا میں جنگوں کی آگ بھڑکاتے رہنے پر نربھر ہیں وہ اس کا کٹھور ورودھ کریں گے۔
رژیم ایالات متحدہ امریکہ ایک رژیم بحران ساز و بحران زیست ہے۔
یہ بھی طے ہے کہ ایران کی جنتا اور نیتتو نے سوچ سمجھ کر اپنا راستہ چنا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہ چنوتیوں سے بھرا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں کو دنیا کی بڑی طاقتوں کا سہیوگ نہیں ملے گا، بلکہ دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر انہیں یہ بھی پتا ہے کہ پرتشٹھا کا راستہ یہی ہے، گورو کی ڈگر یہی ہے، اور اسی راستے پر چل کر بھوشیہ کو سنوارا جا سکتا ہے اور دنیا میں سر اٹھا کر جیا جا سکتا ہے۔
ایرانی جنتا اور نیتتو نے تو اپنا راستہ چن لیا، مگر اسی راستے کو علاقے کے بہت سے راشٹروں نے چن لیا۔ ایران نے یہ وچار دھارا اور یہ کرانتی دوسروں کو نریات نہیں کی، بلکہ یہ تو خوشبو کی طرح پھیلتی چلی گئی۔
انقلاب ما مثل بوی گله، مثل هوای بهاری است، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، پخش میشه،
اس طرح اس کرانتی نے ایران ہی نہیں بہت سے دیشوں اور راشٹروں کی تقدیر بدل دی اور انہیں نیا راستہ دکھا دیا۔ اس لیے ایران ہی نہیں بہت سارے راشٹر اسلامی کرانتی کے سنستھاپک امام خمینی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی امام خمینی کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔
تو دوستو، آج کی سبھا کے انت میں آپ کی سیوا میں جو کارکرم پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے اچھی عادتیں۔ تو چلیے مل کر سنتے ہیں کارکرم اچھی عادتیں۔
اچھی عادتیں۔
دوستو، کارکرم اچھی عادتیں لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور سید میسم کا سلام سویکار کیجیے۔
کارکرم کی پچھلی کڑی میں ہم نے الیکھ کیا تھا کہ بچپن میں ہی اچھی عادتیں سکھانا اور بری عادتوں سے دور رکھنا ماتا پتا کا کرتویہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسکول میں یہ ادھیاپکوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچوں میں انوشاسن لانے کے لیے غصے اور دھمکی سے بچنا چاہیے۔ اسلامی پرمپراؤں میں کروھ کی بہت نندا کی گئی ہے اور اسے سبھی برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی صحیح سنسکاروں کا پالن کر کے اور ویوہارک روپ سے بچوں کے لیے آدرش پیش کر کے انہیں ان کے پالن کے لیے پریرت کریں اور انہیں سویکار کرنے کے لیے بھومی پرشست کریں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی یہ پاک صاف پرکرتی دھیرے دھیرے دھومل اور دوشت ہوتی چلی جائے گی۔
اس پریپریکش میں کہا جا سکتا ہے کہ جس پرکار بچوں کے صحیح مارگ درشن اور ان کی صحیح پرورش کے لیے بھومی پرشست ہوتی ہے، اسی پرکار ان کے بھٹکنے اور سیدھے راستے سے بھرمت ہونے کی بھی سمبھاونا ادھک ہوتی ہے۔ بچوں کا من صاف اور دل کومل ہوتا ہے اور جیون کا انوبھو نہ ہونے کے کارن ان کے بھٹکنے کی سمبھاونا بھی ادھک ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے سفل جیون کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹائیں اور ان کے پوتر من اور کومل دل کو انیتک ایون ساماجک برائیوں میں لپت ہونے سے سرکشت رکھیں۔
ایک بری عادت جو نہ صرف بچوں پر بلکہ بڑوں پر بھی نکاراتمک اثر ڈالتی ہے وہ ہے بچوں کی ایک دوسرے سے تلنا کرنا یا خود کی دوسروں سے تلنا کرنا۔ اس عادت کے تحت انسان دوسروں کو یا خود کو ناپسند کرنے لگتا ہے اور پھر اس میں اہنکار یا نراشا پیدا ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ تلنا کرنا سرے سے غلط ہے، بلکہ کچھ اوسروں پر اس کے سکاراتمک اور اتساہ جنک پریڑام ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تلنا سارتھک ہونی چاہیے اور اس میں نکاراتمک پہلو شامل نہیں ہونا چاہیے۔
دوستو، اگر آپ اپنی کشمتاؤں کے بارے میں سوچے بنا صرف اپنی کمیوں کو سوچ کر پریشان ہوتے ہیں تو آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی ایک کمزوری ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کو اپنے جیون کے کچھ انمول پہلوؤں کا آنند لینے سے بھی روک دیتی ہے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ نرنتر کی جا رہی تلنا آپ کے آتم سنمان کو کم کر دیتی ہے اور اس سے آپ کو اپنے ہی بارے میں برا لگنے لگتا ہے۔ دوسروں سے تلنا کرنے سے ہمارے من میں دوسروں کے پرتی جلن اور ایرشا پیدا ہونے لگتی ہے اور ہمارے اندر نراشا بڑھنے لگتی ہے۔ انسان اگر خود کی تلنا خود سے کرنا سیکھ جائے تو وہ دوسروں سے تلنا کرنے سے سوئم کو بچا سکتا ہے۔ خود سے تلنا کرنے پر اپنی کمیاں اور خامیاں سدھارنے کا اوسر ملتا ہے۔
دوسروں کے بجائے اپنی تلنا خود اپنے آپ سے کریں، اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے نرنتر پریاس کرتے رہیں۔ اس طرح سے آپ خود ہی اپنے لیے ترقی کے راستے کھولتے جائیں گے اور خود سے ہی پریرنا حاصل کرتے جائیں گے۔ جب آپ اپنی سفلتا کی کسوٹی کا استعمال اپنی ترقی میں کرتے ہیں تو آپ دوسروں سے اپنی تلنا کرنا بند کر دیتے ہیں۔
दुर्भाग्य से कई महिलाएं और पुरुष अपने जीवन साथी की तुलना दूसरों के जीवन साथी से करते हैं। कुछ लोग इस तुलना को अपने जीवन साथी को संवेदनशील बनाने के लिए करते हैं ताकि वो खुद में सुधार कर सकें या अपना व्यवहार बदलने के लिए अधिक प्रयास करें। लेकिन ये तरीका न सिर्फ ये कि काम नहीं करता है बल्कि बिल्कुल हानिकारक भी होता है। इसका आपके जीवन साथी और आपके रिश्ते पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तुलनात्मक व्यवहार दूसरे पक्ष की भावनाओं और व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है और इससे उसके आत्मविश्वास पर गंभीर चोट लगती है। इसके अलावा इससे रिश्ते में ठंडक और उदासीनता आती है। पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचने लगते हैं।
कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पति पत्नी द्वारा एक दूसरे की दूसरों से तुलना करने के कुछ कारण होते हैं जिनकी जड़ें बचपन में की गई परवरिश से मिलती हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति की बचपन में उसके साथियों से लगातार तुलना की गई हो और ये चीज उसके दिमाग में घर कर गई हो, इसलिए जब वो बड़ा होता है या होती है तो वो लगातार अपनी नौकरी, अपने घर, अपने पिता या माता और अपनी पत्नी की तुलना दूसरों से करता है या करती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन, अपनी चीजों, अपने रिश्तों, अपने स्वरूप और अपनी नौकरी से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और वो हर चीज में श्रेष्ठ और यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ बनना पसंद करता है। जीवन साथी की दूसरों से तुलना करने का एक कारण स्वयं जीवन साथी भी हो सकता या हो सकती है। हो सकता है इसका कारण जीवन साथी की ओर से भावनात्मक, यौन या आर्थिक रूप से कमी के कारण हो।
बहरहाल अपने जीवन साथी की दूसरों से तुलना करना एक बहुत बड़ी गलती है जिसका संयुक्त जीवन पर बहुत बुरा और घातक असर पड़ता है। इस तरह से आपके जीवन साथी का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होता जाता है और वो आपके प्रति उदासीन होने लगता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त जीवन में दिखावे का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, बल्कि जो चीज़ इस रिश्ते को मजबूत बनाती है वो एक दूसरे को समझना और एक दूसरे से मोहब्बत करना है।
अपने जीवन साथी की दूसरों से तुलना करने का एक और नकारात्मक परिणाम ये होता है कि आप अपनी नज़र में उसकी हैसियत को कम करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके प्रति उदासीन होने लगते हैं। रिश्तों में उदासीनता जीवन को काफी व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है और इसका असर बच्चों की परवरिश और उनकी मानसिकता पर भी पड़ता है। इसके अलावा गलत तुलना जीवन साथी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि उसके जीवन साथी ने उसे वैसे ही स्वीकार नहीं किया है जैसा या जैसी वो है और अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो उदास और निराश हो जाता है। कभी कभी वो प्रतिक्रिया जताता है और इसकी शिकायत भी करता है। ये चीज परिवार के भीतर विवादों और समस्याओं को जन्म देती है। इसके अलावा पति की दूसरों के साथ वित्तीय तुलना उस पर दबाव डाल सकती है और वो इस दबाव से बाहर निकलने के लिए अनुचित आर्थिक जोखिम उठा सकता है।
दोस्तों, आपको उन परिणामों से बचने के तरीके के बारे में सोचना होगा जो आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकते हैं। यहाँ हम कुछ समाधानों का उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात का निर्धारण करें कि आपको खुद से और अपने जीवन से क्या अपेक्षाएं और इच्छाएं हैं। उसके बाद अपनी क्षमताओं, उपलब्ध सुविधाओं और अपनी इच्छाओं का तर्कसंगत तरीके से मूल्यांकन करें। अगर आप मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को समायोजित कर सकते हैं तो आपकी चिंताएं, आशंकाएं और बेचैनी कम हो जाएगी। उद्देश्यहीन जीवन आपको तुलना करने के लिए मजबूर करता है। याद रखें कि हर किसी का जीवन अद्वितीय होता है और आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को दूसरों की परिस्थितियों के कारण प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जब आप अपनी पत्नी से बेहतर दूसरे की पत्नी को देखें और तुलना करना शुरू करें तो इस बिंदु को ध्यान में रखें कि आपने उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना था और हर व्यक्ति में नकारात्मक पहलुओं के साथ साथ अच्छे गुण भी होते हैं।
इस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप अपने जीवन साथी की दूसरों से तुलना करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं हैं और जो अपने दिमाग में खामियों को अधिक बड़ा कर लेते हैं। इंसान को उन अनुकंपाओं के लिए ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए जो उसने उसे अता की हैं और दूसरे इंसानों के पास वो नहीं हैं। अपने जीवन साथी का उसकी मेहनत और कामों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। इससे आपके प्रति उसके दिल में मोहब्बत बढ़ती है और दूरियां खत्म होती हैं।
तुलना के एक और विनाशकारी प्रभाव यह है कि आपका जीवन साथी भी कहीं वैसा ही नहीं करने लगे, यानी आपका जीवन साथी भी दूसरों की विशेषताओं को सामने रखकर आपकी तुलना दूसरे लोगों से नहीं करने लगे। ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं है। अगर आप इससे निपटने के लिए अपने जीवन साथी की दूसरों से तुलना कर रहे हैं तो इसे बंद कर दें ताकि वो भी अपनी इस आदत को छोड़ दे, नहीं तो समय के साथ आपकी नोकझोंक और लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण को शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। तो फिर अगली सभा तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے،